ओम शांति। शांतामणि दादी जी के साथ हमारा बहुत अच्छा रहा कि दादी जी की सेवा का भी मुझे बहुत चांस मिला। कभी भी दादी के पास, दादी हमेशा कंट्रोलर रही, मधुबन निवासी और सेवाधारी दोनों की, क्योंकि कोई भी सेवा होती थी तो दादी कहती थी, दादी आज सब्जी नहीं कटी है, तो दादी वहां जाती थी। हाँ जी हमेशा दादी कहती थी, जाकर के बैठ जाती थी, आओ भाई आओ, बैठो बैठो, 5 मिनट बैठो। तो सब बैठ जाते थे और दादी का स्वभाव बहुत ही शांत और निर्मल था। दादी के पास जाते ही जैसे कि ऐसा लगता था कि बहुत अच्छा अनुभव होता था कि कैसे दादी एकदम खुश है, शांत है, गंभीर है, निर्माण है। क्योंकि दादी के पास बात करने में ऐसा नहीं लगता था कि भाई दादी से कैसे बात करें, प्यार से दादी बात करती थी और सबको सहयोग देती थी हमेशा। आत्म प्रकाश भाई दादी के साथ में रहते थे, माना कोई भी सेवा होती थी तो आत्म को बुलाओ ऐसे बोलती थी, फिर वो सेवाधारी को सेवा देती थी। और दादी जैसे बाहर कभी बहुत कम जाती थी। पहले दादी गई थी लखनऊ में, सेवा किया दादी ने 15 साल लगभग। उसके बाद जब बाबा अव्यक्त हुए तो दादी जी मधुबन में रहे। दादी ऑफिस में भी बैठती थी, कभी पैसा लेने जाना होता था तो जाते थे लेने के लिए, बाजार से कुछ लाना होता था तो दादी के पास। कभी ईश्वर रतन दादा बैठते थे, कभी यीशु दादी बैठते थे, कभी माना यीशु दादी नहीं होती थी तो ईश्वर रतन दादा और शांतामणि दादी दोनों बैठते थे। तो दादी को बाबा सचली कोड़ी कहते थे और दूसरा गंगा के स्नान करने जाते उसको क्या बोलते, हर की पौड़ी। हर की पौड़ी माना सब लोग वहां, पानी स्थिर होता है तो वहां सब स्नान करते हैं। तो मधुबन बाबा का घर, सारे विश्व की आत्माएं आती हैं तो यहां पर सबको मिलते थे। तो दादी जी हमेशा खुश रहते थे, शांत। एक बार वो दादी बेंगलोर की दादी सरला दादी थी, उसको दादी मिलने गई शांतामणि दादी। तो उसने कहा कि दादी आपने तो विजय पा ली। तो दादी शांतामणि दादी ने बोला कि कोई भी परिस्थिति आती है, हमारा शरीर का पेपर आता है, उसमें हम शांत रहे और उसमें हम एकदम कोई डमाडोल नहीं होए, तभी हमारी योग की परीक्षा होती है। हम कहां तक ज्ञान योग में धारणा है, कोई भी परिस्थिति आती है उस समय हमें मालूम पड़ता है कि हमें कितनी बाबा की याद है, कितना हमने ज्ञान की गहराई में गए हैं, वो तभी हमें मालूम पड़ता है। तो दादी जब तबियत ठीक नहीं थी तो दादी को मैं देखा इंजेक्शन लगा रहे थे तो ऐसे नहीं जैसे कि कुछ पता ही नहीं, जैसे कुछ लगता है कि भाई न तो कहते हाँ भाई थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा ऐसे नहीं करो, कुछ नहीं, कहाँ भी लगाओ, कैसा भी करो, कुछ भी करो, तो हाँ जी ये दवाई लेनी, अच्छा दे दो, ये इंजेक्शन लगाना है तो अच्छा कोई बात नहीं, करो, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं, ऐसे कहते थे दादी। माना अपनी स्थिति में हमेशा बाबा की याद में रहती थी और हर एक कारोबार में दादी हमेशा पहले जाती थी। जैसे रोटी बनानी है तो दादी पहले जाती थी, भाई सब आए, खुद दादी बैठ जाती थी, दादी खुद सेवा करने बैठ जाती थी। कभी भाइयों की भट्टी है तो बहनें सेवा करती थी, और बहनों की भट्टी है तो भाई सेवा करते थे। तो दादी हमेशा सब जगह सब सेवा में हाजिर रहती थी। और दादी ऐसे, उसका जो परिवार था दादी का, वो बहुत अच्छे घराने के, बहुत रिच घराने के थे। उसके पिताजी का श्रीलंका में व्यापार होता, व्यापार चलता था। और जब बाबा वहां गए थे कश्मीर में घूमने के लिए, तभी उसके पिताजी वहां गए थे और दादी यहाँ पर, उसका परिवार सब ज्ञान में चलने लगा। वो वहां जाने के बाद उसको वहां ज्ञान मिला। जब वो बाबा से मिला, उसका पहले अपना निर्मल शांता दादी बाहर खड़े थे, तो उसको पूछा भाई पहलगाम का रास्ता कहाँ है, तो उसने बोला आपको परमधाम का रास्ता बताता, आओ आओ। तो जैसे बाबा को देखा तो बाबा ने उसको बेटा कहा। ऐसे दोनों की उम्र समान थी, फिर तो ऐसे उसको लगा। फिर बाबा से उसको साक्षात्कार हुआ, परमधाम का साक्षात्कार हुआ, और फिर वो ज्ञान में चलने लगा और सारा परिवार समर्पित हुआ। संदेशी दादी, शांतामणि दादी की बहन और ध्यानी दादी थी, उसका मौसी थी, ये चार बहनें थी और एक भाई था। उसमें शांतामणि दादी और संदेशी दादी दो पक्के रहे, बाकी वो लौकिक में गए। कुछ समय रहे यहाँ पर, फिर बाद में लौकिक में। एक उसकी बहन यहाँ आती थी, डॉक्टर उसका युगल था। दादी का ऐसा स्वभाव था ना कि जो भी मिले, कुछ भी ले न मिले, हमेशा खुश, हमेशा शांत रहती थी। ऐसा नहीं भाई उसको मिला मुझे नहीं मिला, क्यों क्या कैसे, ऐसे में नहीं जाती थी। सदा ही सरल चित, सदा ही संतुष्ट, हर परिस्थिति में हर बात में संतुष्ट। भोजन बहुत थोड़ा सा, एक छोटी सी प्लेट में खाती थी, एक छोटी रोटी और थोड़ी सी बस खिचड़ी, इतना ही। जैसे कि हम लोग तो एक गिट्टी में खा ले, दो गिट्टी में इतना। मैं बोला दादी आप इतना ही बस, हाँ बस और क्या, ना इतना अल्पाहारी, और कितनी सेवा में हमेशा दौड़ भाग, ऊपर नीचे। ऊपर कमरा था दादी का, वो भी बहुत छोटा सा कमरा, एक जैसे खटिया आती थी और मुश्किल से निकलो, ऐसी इतनी जगह में दादी रहती थी। फिर नीचे भी जहाँ पर अभी मुन्नी बहन का कमरा है, उसके बाजू में दादी का एक छोटा सा कमरा था। हाँ, बहुत बहुत कम जगह में उसमें रही। ऐसे बड़े घर की थी, बहुत रॉयल घर था उसका, परिवार भी बहुत अच्छा था, बहुत रिच घराने के थे। लेकिन कोई भी अनासक्त वृत्ति, ऐसे संतुष्ट आत्मा, ऐसे कहते हैं ना, हर बात में संतुष्ट। कुछ भी मिला नहीं मिला, कभी खाना खत्म हो जाता था तो भी बस कुछ नहीं, पानी पी के बैठ जाते थे। ऐसा नहीं कि भाई आज मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं। हम बोला कि दादी आपके लिए बना के ला दे, कुछ नहीं अभी तो चलेगा, अभी इतना भूख नहीं है, ऐसा बोलती थी ना। हर बात में वो कैसे संतुष्ट, और सबको संतुष्ट भी करते थे दादी। कोई भी सेवा, किसी भी प्रकार की सेवा हो, सबको सेवा भी देती थी दादी। किसी की कोई भी सेवा हो तो दादी कहती थी, बड़ी दादी शांतामणि दादी को बोलते थे, भाई दादी इसको ये सेवा दो, दादी इसको ये सेवा दो, इसके पास सेवाधारी नहीं, इसको सेवा दो। तो जो भी, जिसको भी सेवाधारी चाहिए तो शांतामणि दादी से लेते थे, हैंड्स चाहिए, सहयोग चाहिए। हाँ, कंट्रोलर थे ना दादी, मधुबन निवासी और सेवाधारी सबके। तो इतना सरल स्वभाव, इतनी शांत स्वरूप, इतनी गंभीर, इतनी निर्माण, और हमेशा ही सबके साथ बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से बातें करती थी, और अभिमान नहीं कोई भी प्रकार का। इतना, इतनी बड़ी होते हुए भी ऐसी निर्माणता थी, और हर बात में जैसे कि कितनी पर्सनालिटी, रॉयल्टी लगती थी। जब मम्मा मम्मा को मिलते हैं ऐसी भाषा आती थी, ऐसी मधुर बोल वाणी, और ऐसी शिक्षा प्यार से देती थी, इतनी समझानी। हाँ, कुछ जो लेने चाहे जाने लेने जाते थे वो बता देते थे, ऐसा ही मना संतुष्ट हर बात में, कुछ मिला नहीं मिला हर बात में संतुष्ट। ऐसा नहीं कि भाई उसको ऐसा है मेरे को ऐसा नहीं, वैसा वैसा कुछ भी, कोई संकल्प मात्र नहीं, एकदम जैसे कि बने बनाए देवता। देवता तो बाद में बनेंगे, लेकिन अभी वर्तमान समय जो इतनी उदारता, इतनी सरलता, इतनी महानता, इतना हरेक के साथ इतना सहयोग की भावना, हर बात में जैसे कि परफेक्ट जैसे थी इसे दादी। किसी से कभी भी दादी का जोर से बोलना कभी नहीं देखा, हमेशा दादी मुस्कुराती थी और सबको संतुष्ट करती थी। शांतिवन बना तो दादी जी को भेजा, फिर शांतामणि दादी संभालती थी। कभी भी कसकर कमरे में चले जाओ, कभी भी जाओ, तो हमेशा दादी कहती आओ, ऐसे बोलती थी। हाँ, जो बाबा ने बोर्डिंग स्थापना की थी उसमें से शांतामणि दादी भी थी। पांच चिड़िया, बाबा कहते ना पांच चिड़िया ने भप किया, तो उसमें शांतामणि दादी, कल्प वृक्ष में भी दादी का फोटो है नीचे तपस्या करते हुए। मम्मा की मौसी की लड़की, एक ध्यानी दादी थी, वो भी उसकी मौसी लगती थी। वो भी छोटी उम्र में विधवा हो गई थी, लेकिन बाबा उसको मिश्री कहते थे, बहुत मीठी थी। बाबा कहते थे जाओ, तो तुरंत जाती थी ध्यान में, संदेश लेके आती थी और भोग लगाती थी, और बाबा ने बहुत महिमा करती थी। आज बाबा ने कहा कि देखो देवताएं भी आए, देवताएं भी कहते थे बाबा हमको यज्ञ का भोजन खिलाओ, कितना यज्ञ का भोजन का महत्व है, तो देवताएं भी तरसते हैं। इतना प्यारा ब्रह्मा भोजन जो देवताएं आकर के बाबा को कहते थे, कहते हैं, वो संदेश सुनाते थे भोग के बाद। मना ऐसे भोजन, मना जैसे बाबा का भोग धराते ना बाबा के कमरे में, तो वो भोग लगाते थे दोनों टाइम। एक बार दादी को हाथ में दर्द था, मना तो ऐसे, ऐसा नहीं कुछ भाई ऐसे तकलीफ है, मना महसूस नहीं ऐसा होता था, ऐसे नहीं कहते थे बहुत तकलीफ है, ये दर्द है, वो दर्द है, ऐसा नहीं। मना एकदम चेहरे से लगे नहीं कि भाई आज तकलीफ है, पेशेंट नहीं, पेशेंस के रूप में दिखाया। मना सहनशीलता की एक मूर्ति हर बात में, हर परिस्थिति को कैसे दादी ने सामना किया, एकदम शांत स्वरूप और आनंद स्वरूप की स्थिति। हमेशा दादी एकदम खुश और सदा ही मुस्कुराती रहती थी। सब भी कोई भी जाते थे बाद दादी के पास, तो बहुत दादी से ऐसे मुस्कुराते हुए, ऐसी मीठी मीठी बातें दादी करती थी, जो सब खुश हो जाते थे। संतामणि दादी का और मम्मा का जैसे मिलता आता है, दोनों का चेहरा और कद ऐसे उनसे अनुसार। जैसे शांतिवन शुरुआत हुई ना, तब से दादी शांतिवन संभालती थी। 15 साल हुआ, नहीं 15 साल माना, दादी तो 10 साल हुआ शरीर छोड़ा, उसके पहले 15 साल, 2010 माना 7 साल हो गया। नहीं माना कभी जैसे दादी को भोजन देना है, ब्राह्मणी नहीं है, तो कभी 5-10 मिनट लेट हुई तो भी दादी कहती थी अच्छा कोई बात नहीं। माना दादी ने खास विशेष कोई ब्राह्मणी नहीं रखी, एक माता थी वही दादी की सेवा करती थी, रेणुका माता। नहीं माना जैसे दादी प्रकाशमणि दादी भोली दादी के पास में सेवा करता था ना भंडारे में, तो कहीं भी जाना होता था तो दादी खुद कहती थी अच्छा गीता का फोन आया है मैं भी जा रही हूँ आप भी आओ। इसे 76 में पहले से ही भंडारे में ही सेवा किया शुरू से ही, अभी भी भंडारे में ही है सेवा। भंडारे की सेवा वो तो शुरू से ही, कोई भी कुछ सेवा होती थी तो दादी बोलती थी भाई जाओ इसकी सेवा करो ये ध्यान रखो ऐसा, ताकि भंडारे की सेवा ही शुरू से ही। भंडारे में मक्खन निकालने की सेवा किया, पहले उसमें बेलते थे ना सिगड़ी जलाने का, सिगड़ी जलाते थे, रोटी बनाने का, फिर चाय बनाते थे। सभी को फिर जो भी बड़ी बहनें आती थी उसको सबको चाय देना, जगदीश भाई को देना, जैसे कभी कभी भूल जाते थे तो 10-12 थर्मस होते थे तो कभी किसका ऐसे, तो जगदीश भाई कहते थे भाई थर्मस तो दे जाते थे भाई, चाय नहीं दिया तो कोई बात नहीं। लास्ट में जगदीश भाई 3 साल से शरीर छोड़ने के पहले जानकी दादी ने बोला जगदीश भाई की सेवा कर, तो जगदीश भाई ऐसे तो दिल्ली में रहते थे, बीच में कभी कभी आते थे थोड़ा दिन सभी, माना जगदीश भाई तो कॉन्फ्रेंस वगैरह जो होती थी उसमें सारा पार्ट, सब सेवा जगदीश भाई ने की, कोई भी सेवा ऐसे नहीं जो नहीं की होगी यज्ञ की। चलो ओम शांति।
ओम शांति। क्या शांतमन दादी जी खास करके सेवादारियों का जो संभालती थी, जब वो छोटे से कमरा जहाँ मुन्नी बहन के कमरे के बाजू में रहे, मैं एक बार गया दादी के पास, सेवादारियों का नीचे ऊपर बातें होती रहती थी, तो दादी को हम वो बात दिए तो कभी भी उनको सेवादारियों को बुला के डायरेक्ट नहीं बोलती थी, विशेषता ये थी उनको बात देना भी है माना उनको शिक्षा देना भी है, मगर ऐसा बुला के उनको प्यार से डायरेक्ट आपने ऐसा क्यों किया ये नहीं बोलती थी, मगर उनको बुला के उनको फिर पहले टोली देती थी, उसके बाद आप ऐसा इतना अच्छे हो या हम इतने सेवा करने के लिए आए हो ऐसा एकनामी से चलना ये चलना, फिर ये बात थोड़ा ठीक नहीं लगती माना उनको पिंच ना हो, इस प्रकार से शांतमन दादी बात देती थी। एक बार क्या हुआ, हम लोग दादी से बात करना था माना दादी कमरे में, मगर दादी रेस्ट पे या कुछ उस समय जाने का नहीं होता था, मगर मैंने रेणुका माता को बोला यहाँ टेलीफोन लगाओ दादी से, जब चाहे तब बात कर सके कोई बात दे सके, तो दादी को जाके रेणुका माता ने बोला ऐसा चंद्रशेखर बोलता है क्या करना है अभी तो घर जाना है ये सब लेके। खास मैं ये बात 2-3 बार दादी से टेलीफोन के बारे में चर्चा किया था, आपके पास टेलीफोन रहे तो दादी कभी भी कोई बात देना है कुछ बात हो गए तो क्योंकि एक बार कुछ विशाल भवन में कोई माता गिर गई थी या कुछ हुआ था तो दादी को उस समय दोपहर में था तो दादी के कमरे में जाने में थोड़ा उस समय हाल में माताएं होती थी जो ये क्या था दादी का कमरा अंदर साइड में रहता बाहर सब माताएं सात आठ माताएं सोती थी मधुबन कई तो पहले तो उनको देखना पड़ता था पहले वो कैसे है फिर दादी के कमरे में दादी कमरे में तो कभी भी जाओ कैसे भी हो दादी हाँ आ जाओ आप ना नहीं करती थी कोई भी बात। फिर हमने एक बार क्या हुआ विशाल भवन में कोई सेवादारी माता का कुछ कोई बात हुआ मना कुछ गुम हुआ था दादी को मैंने बताया क्या करे कैसे करे दादी ने बोला आप ऐसा करो योग करो थोड़ा देर योग करके फिर बाबा कमरे में जाओ बाबा आपको टच कराएगा। मैं सचमुच उस समय गया बाबा का कमरे में योग किया दो मिनट वो जैसे ही बाबा ने टच कर दिया वो वही है उस स्थान पे ही है वो माता ऐसी गुम हुआ बोला। फिर मैं जाके सारा बिस्तर चेक किया उसके गद्दे के नीचे ही था वो चीज जो गुम हुआ माना दादियों का जो क्लियर बुद्धि था एकदम जो बात कहते थे उसको प्रैक्टिकल हम करने से उसका सफलता मिलता था। दादी ने मैं एक बार यहाँ पिकनिक का प्रोग्राम था सब गए थे दादी को पूछा दादी आप गए नहीं पिकनिक में क्या करना यहाँ बैठे है ना घर संभाल रहे ना मना किसी प्रकार की उनके कोई कुछ बोला है सब दादी आ गई मैं भी जाऊं ये नहीं होता था दादी को यहाँ बैठे है घर में संभाल रहे यही हम किसी प्रकार के अंदर से जो इच्छा हो एक होता है भाई प्रोग्राम अनुसार जा रहे दूसरा होता है कि हम भी जावे हम जाके दादी को बोले बड़ी दादी को दादी हम भी चलते हैं ऐसा ये नहीं होता था दादी के अंदर। और दादी के अंदर कोई भी बात देने में मधुबन वालों को ड्यूटी दादी ही देती थी बड़ी दादी कहती थी शांतमन दादी को दादी इनको कोई ड्यूटी देखो कहां इनको सेट करो फिर दादी देखती थी इधर उधर कहां सेट कर सकते हैं। फिर वहां एक भाई था मधुबन का नया नया आया था उसको ड्यूटी देने के लिए वहां भेजा तो उसको बार बार वहां से कंप्लेंट आया। फिर दादी ने हमको पूछा क्या करना है इसको ये सेट नहीं हो पा रहा। फिर दादी को हम लोग ने राय दिया एक पूछ के दादी इसको भंडारे की तरफ भेजो। फिर दादी ने सोचा नहीं दूसरा जगह पैरे पे भेजो ये ठीक हो जाए माना दादियों को वो टच भी होता था हर बात की कोई भी बात कहाँ कैसा किसको रखना है इस प्रकार का भी दादी का था। और दादी जो मीटिंग में जब जाते थे माना छोटा मीटिंग जो दादियों के साथ होता था मैंने सुना ये बात रेणुका माता ने बताया था कभी भी दादी कोई अपने तरफ से बातें नहीं रखती थी या दादी कोई ड्यूटी देती है तो उसको पूरा एकदम एक्यूरेट से वो ड्यूटी को निभाती थी। दादी शांतमन दादी को दादी ने कहा भाई ये संभालना ये ध्यान रखना तो वो एक्यूरेट दादी को निभा के वो दादी को बताते थे दादी का दिल जीत लेते बड़ी दादी की। इस प्रकार जो है शांतमन दादी का अनेक बातें हैं जो कई बार जो ओम शांति भवन में जो मुरली चलाते थे एक बार दादी का मुरली चल रहा था या नीचे भी चल रहा था कोई ने बोला ये मम्मा का आवाज लगता है क्योंकि दादी का आवाज जैसे ही जो नए लोग सुनते हैं तो उनको इतना पहचान नहीं है उससे मिलता जुलता था मम्मा का जो बोल और मम्मा का जो चलन उसी अनुसार दादी का कभी हमने ये नहीं देखा फटफट चल रहे हो जैसा स्थूल में जो लगता है कि सचमुच ये देवताएं मूर्ति बैठी है या मूर्ति चल रहे है या मूर्ति बोल रहे है किसी से भी बात करे तो कभी भी उसको ये लगता था बस हम बस एक देवता से मिले। एक बार एक माता थी कर्नाटक साइड की माना आंध्रा साइड की वो माता को भाषा नहीं आती है मगर दादी से मिलना है माना दादी को कुछ दादी को देना वो होता है। मैं बोला जाओ आप दादी को, मैं रेणुका माता से बात करता हूँ, दादी से मिल लो। बोला मेरे कुछ बोलना नहीं, हिंदी नहीं आता है, क्या करूं। नहीं आप जाओ दादी के पास, मैं ऐसा बोल दिया, मैं थोड़ा देरी हो रहा, 5-7 मिनट में मैं आऊंगा, ऐसा बोल के बोला। वो माता चले गई वहां, दादी हिंदी में बोले वो कुछ, बस दादी के चेहरा देखती रही। उसने बाद में मेरे के सब तेलुगु में बताया, दादी की चेहरा देखते गई, दादी क्या बोल रहे है, दादी हिंदी में बोल रहे है। वो दादी के चेहरे से ही वो समझ गई मेरे क्या बोला, मेरे को बाबा ने वरदान दे दिया, ऐसा वो फील हुआ दादी से। और दादी जब भी योग कराती थी तो ये महसूस होता शक्ति रूप बैठी है, जैसा संदल पे बैठी है या कुर्सी पे बैठी है। कभी भी जब सेवादारियों का क्लास से पहले योग कराती थी, उस समय मैंने प्रैक्टिकल देखा। और जब जो बात देना होता था, दादी कभी सीधी बात सेवा ग्रुप बड़ा ग्रुप में सीधी बात नहीं कहती थी, पहले उनका महिमा करके उनको, आप लोग इतना अथक हो, इतना अच्छा सेवा करते हो, इस प्रकार दादी सुना के फिर वो बात देती थी। देखो हम यहाँ मधुबन में बैठे हैं, बाबा के घर में बैठे हैं, कोई भी चीज ऐसा वेस्ट नहीं करना चाहिए, भोजन के बारे में या कमरों के बारे में या फिर चलन के बारे में, एक दूसरे का जैसा क्या होता है, कई बार सेवाधारी रहते हैं एक कमरे में 10 लोग 12 लोग रहते हैं, किटपिट होता है, रात को 10 बजे के बाद भी सोते नहीं, फिर वो लाइट चालू करना एक बंद करना, ये सब बातें होती रहती थी। तो हम आज भी होती है मगर हाँ देखो जब जाता हूँ पहले तो मैं जाते ही आवाज बंद हो जाता है, जैसे ही जाके मैं खड़ा होता हूँ तो, क्योंकि नीचे से उन लोगों को पता चलता है चंद्रशेखर भाई आ रहा वहां, तो फट बंद हो जाता है। नहीं वो क्या होता है, जिसका जवाबदारी है तो वो उसको देखने से थोड़ा डरते तो है, ऐसा तो है, मगर फिर डराने की मना वो अपने आप, क्योंकि क्या है, गलत तो गलत ही है ना, आवाज करना 10 नहीं, एक ये अपना मधुबन का एक उसूल है, एक रूल है कि 10 बजे के बाद आवाज नहीं करना चाहिए, लाइट बंद करना चाहिए, क्योंकि कोई सवेरे 3 बजे उठने वाले होते हैं, 2:30 बजे उठने वाले होते हैं। आज भी माता है 2:30 बजे उठ के तैयार होके 3:30 बजे तक योग में आ जाती है, उनको जल्दी सोना होता है तो उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ज्यादा ज्यादा आप 10 बजे तक लाइट चालू रखो। मैं जाके यही बातें समझाता था। एक बार क्या हुआ, सेवादारियों के कमरे में एक माँ, कोई ऐसी आते हैं सेवादारियों में भी, कोई गुम हो गया, एक चीज गुम हो गए, तो वो माता बहुत रो रही थी, भाई मेरा पैसा इतना ही है मेरे पास, गुम हो गया क्या करूं। अच्छा ठीक है, फिर मैं गया वहां जाके कमरे में जाके, ऐसा ऐसा गुम हो गए, सबको पता है, हाँ पता है गुम हो गया, ऐसा बोला है माता ने। फिर मैंने बोला अभी कल गुरुवार है, बाबा के पास मैसेज भेजेंगे, जिसका भी नाम है वो नाम आ जाएगा, ध्यान रखना। आप अभी कल तक आप लोगों का चांस है, जिसने भी लिया उसके तक्के के नीचे रख दो। हाँ फिर ऐसा बोल के मैं आ गया रात को। फिर मेरे को पूछा क्या किया आपने, मैंने बोल के आया हूँ, देखो कल तक वेट करो। फिर कल सवेरे मैसेज मिला, पैसा मिल गया, माना वो सीखा, माना ये तो होता है। देखो एक एक चीज है इसमें, बाबा जिसको जवाबदारी देता है ना, जवाबदारी देता है तो वो शक्ति भी देता है। आज प्रैक्टिकल जिस ड्यूटी पे हूं मैं, उसमें मेरे को तो ना हिंदी लिखना भी नहीं आता है इतना अच्छा, और मैं तेलुगु में लिख के, मेरे को याद है मैं जब शुरू में आया था ये हिंदी कैसे सीखा, एक बार बहन जी मेरे लिए, मैं दूसरा गांव में जा रहा था, भोजन बना रही थी अंदर, तो उसके हाथ पे वो चावल का पानी जो होता है ना, गंजी बोलते, वो गिर गया था, हाथ जल गया था। फिर बहन जी ने बोला अभी मैं क्या करूं, दूसरा कोई मुरली पढ़ने वाला नहीं, मैं ही पहला कुमार था, बोला आपको ही पढ़ना है, मेरे दे दिया मुरली, नहीं मैं एक अक्षर भी ठीक नहीं आता है कैसे पढ़ सकूंगा। फिर मैंने क्या किया, वो मुरली को लेके गया, उसके नीचे ही तेलुगु में लिखा, उसको कम से कम रात भर में 50 100 बार पढ़ लिया एक एक शब्द, पढ़ के फिर मैं जाके संदल पे बैठ के मुरली पढ़ा। इस प्रकार मैंने मुरली सीखा। फिर अब जब भी अभी मुरलियां लिखते थे तेलुगु शब्द, हिंदी शब्द और तेलुगु में लिख के उसको पढ़ता था। माना कोई भी चीज हिम्मत रखने से वो मदद बाबा का मिल ही जाता है, ये गारंटी है। और दादियों को प्रैक्टिकल हमारे सामने एग्जाम्पल, इतने दादियां जो बड़ी दादी है शांतामन दादी है, ये सब अभी भी जो भी है दादियां है उनको बारीक से देखो, आपको समझ में आएगा कि ये कैसे चल रहे, क्या बोल रहे, किसको क्या वरदान दे रहे। उससे हमारे को पता चलेगा हम क्या है, अभी दादियां क्या है, हम कैसे बन सकते, उनके चेहरे से ही हम रीड कर सकते हैं। ओम शांति।